करके और निकले। देखा जो वो कुंजरी बैठी है उसके समीप गए, जा करके और हाथ से उन्होंने गेहूं उठा लिया, ऐसे तो देगी नहीं, हाथ से उठा लिया, कुछ बुद्धि भी अब हो रही है। किंतु इनके इन भागों से खेतों से जितने गांव के अन्न थे वो सब कुछ गिर गए, भले ही दो एक इधर में लग गए हों और बाकी वैसे पर पहुंच गए। फल दो बड़े मधुर रूप से, उनका रूप देखते ही वो एकदम ठग सी गई। सोची जैसे जब ये बच्चा हमारी गोदी में आ जाए और इसको लाड़ प्यार कर सकूं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। उन्होंने कहा बेटा तुमको तो दे सकूंगी फल, किंतु ऐसे नहीं दूंगी। तू क्या लाया हाथ में? तो हाथ में तो कुछ है नहीं। तो देखा जे सचमुच में नहीं, कहा जैसे एक शर्त है, तू यदि मुझे माँ कह दे तो मैं तुमको ये फल से भरपूर कर दूंगा। देखा जैसे इसको माँ कैसे कहें, विशेष करके वो ये इधर देखने लगे, इधर देख कोई देखता है कि नहीं। देखा जे मैया घर के अंदर में कोई गोपी भी नहीं है, कोई दूसरी भी नहीं है, इधर उधर देख करके और जल्दी से एक सेकंड के अंदर में उसके गोदी में बैठ गए और गोदी में उतर के झट उठ करके और कहने फल दो फल दो। वो एकदम निहाल हो गई। उनके हाथों में कितने फल आएंगे? अंगूर के दो दाने लग जाएंगे, आम एक दे दिया तो उसी से भर जाएगा, और फल कदम्ब के ले आई है और तरह तरह के फल लाई है, जितना आ सका उनके हाथों में मीठे मीठे फलों से भर दिया और कृष्ण उसको ग्रहण कर। वो तो बावली होकर के देखती रह गई, कृष्ण थुमक थुमक नाचते हुए और वहां से घर की तरफ में गए और वहां जाकर के मैया की गोदी में बैठ गया और मैया के अंचल में सब कुछ ढाल दिया। हमें कहां से ले आया? कृष्ण ने इशारे से कहा वहां से ले आया और वो फल लेकर के और सबको देने लगी। यशोदा मैया उनकी हजारों सखियां बैठी थी कृष्ण के दर्शन के लिए, वो फल इतना देने लगी कि वो फल समाप्त ही न हो, कृष्ण के हाथों में आकर के और वो फल अनंत हो गया और वो देते देते सबको थक गई। किंतु जैसा करता था वो फल बना गया। इधर वो कुंजनी कृष्ण को अपना चित्त मन सब कुछ दे दिया, एकदम बावरी हो गई, टोकरी उठाई, पता नहीं जो वो खाली है कि भरी पड़ी है। जब उठा करके गोकुल से लौट करके और जमुना के पुल पर आई, जमुना उस समय पुल तो था नहीं, जमुना के किनारे आई, देखी ये टोकरी तो बड़ी भारी है, क्यों? फल तो नहीं है। असंख्य चिंता मुनिया रत्न जवाहरात हीरे सबसे खड़े पड़े। उसको देख करके सोची जे इनसे अब हमारा क्या मतलब है। उसको लेकर के जमुना में उड़ेल दिया, सब रत्न उसी में जमुना में चला गया और इसके बाद में वो घर नहीं लौटी। कहाँ गई? आंसुओं से एकदम तरबर होती हुई, एकदम कृष्ण के इसमें शुद्ध बुद्ध में एकदम पागल थे और केवल यही गाती गोविंद पागल होकर के ब्रज के गांव गांव में गलियों गलियों में और सर्वत्र वो घूमने लगे। कृष्ण को खोजती खोजती अंत में तन्मय होकर के उसको ब्रज में ही उसको और स्थान मिला और एकदम कृष्ण की प्यारी वो भक्ति हो गई। इस प्रकार से और लोग भी उसमें तन्मय हो गए, वो गलियों में राधे राधे
यंत्र प्रजंतमन के समेत द्वैपायनो विरहकात्रयाजुहा पुत्रे पितन्मेत्रा सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतवितयं निहानतुष्म तवैवास्मि न तज्जिमामि त्वया विना प्रकृतिज्ञाय राधे तं महामतये नारायणं नमस्कृत्य नम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीम्। श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से आज हम लोगों का पंचम दिवस आरंभ हो रहा है। कल बहुत सुंदर रूप से शुष्क रूप से कृष्ण का जन्म आविर्भाव और उनकी अनन्य लीलाओं का वर्णन हुआ। कृष्ण 3.5 वर्ष के हो गए हैं। अब वो चलने फिरने लगे, चोरी करना भी सीख लिया है। किसी ने सिखलाया नहीं, पूर्व जन्म का उनका ऐसा ही संस्कार है। सबसे बड़ी बात कि जो उनका भजन करता है, जदाजस्य अनुग्रह नाति तद्धर हरिष्ये तद्धन, उसके उसका जिसने आसक्ति की बात है सबको वो हरण कर लेते हैं, जिससे कि मुझको कभी न छोड़ सब कुछ उसका ले लेते। यहाँ तक कि गोपियों के राधिका जी के इस कुल को दोनों कुल माने क्या, नदी के जैसे दोनों किनारे होते हैं, तो लड़कियों के दोनों कुल होते हैं, एक पितृकुल शत्रुकुल इत्यादि सभी, वो सबको वो हरण कर लेते हैं। और दुकुल माने होता है एक दुपट्टा, उसको भी हरण करते हैं। अंत में उनका मन भी हरण कर लेते हैं, उनका सर्वस्व हरण कर लेते हैं। और करोत भिक्षु पथि गेह हीनम, उसे भिक्षु और मीरा जैसे और गोपियों जैसे उनको पथ का भिखारी भी बना देते हैं। तो आप लोग डरे मत, यदि ऐसा हो जाए तो जन्म जन्मांतर बन जाएगा, ऐसा होना बड़ा कठिन है। इसलिए दूसरे लोग कृष्ण का भजन नहीं करते, मुझे कृष्ण आंशिक रूप में कुछ नहीं लेता, संपूर्ण रूप से ही वो लेता है। यदि कृष्ण का एकांतिक रूप में भजन कर ले लग जाए, उसके सब पूजा पाठ दूसरे देवताओं देवियों की पूजा इत्यादि सभी कुछ वो दूर कर करके अपने चरण में संपूर्ण रूप से ले लेते हैं। गोपियों के घर में चोरी करना, चोरी के बहाने उनका हृदय चारों तरफ से लेने लग गए। गोपियां ये प्रार्थना करती थी नारायण से, अपने कुल देवता से, ये बच्चा हमारे घर में दूध दही चोरी करने के लिए आया, मक्खन चोरी करने के लिए, और लाने के बहाने फिर चली जाती यशोदा मैया के और कृष्ण का दर्शन कर। कभी कभी बहाने बना करके कृष्ण अपने सखा मंडली के साथ में चले जाते और उनके घरों में जहाँ छिपा करके रखा है मक्खन अपने खाते, बंदरों को खवाते, साथियों को खवाते। और यदि किसी गोपी ने पकड़ लिया, अरे क्यों मुझे पकड़ती, मैंने तो इसको अपना ही घर समझा, ये तेरा घर है कि मेरा घर है, और ऐसे मंद भरे मुस्कान से वो उसके तरफ देखते, ये गोपी हंसती रह जाती और फिर छोड़ देती। कभी एक गोपी ने उनको पकड़ लिया, दधी में हाथ लगा रहे हैं, झट उसी समय आकर के पीछे से पकड़ लिया, कहे मुझको किस लिए पकड़ा, आ तो तुम यहाँ पर दही या मक्खन चोरी कर रहा था। कृष्ण ने बोले जैसे मैं तो अपना बछड़ा खोज रहा था, और तुम्हारा बछड़ा हमारी हड़िया में कूद गया, कहे हाँ कूद गया, देखो, और एक छोटा सा पत्थर मार्बल का बछड़ा नंद बाबा ने खेलने के लिए दिया था, उसमें वो रख दिया था, निकाल कर देखो हमारा बछड़ा इसमें कूद गया। वो भी इसकी बुद्धि पर एकदम प्रसन्न हो गया, कितना सुंदर ये बच्चा। एक समय किसी गोपी ने उनको पीछे से जा कर के पकड़ लिया था। आज भोर के समय में यशोदा जी कहती हैं तो यशोदा हंस करके टाल देती है, वो सुनती नहीं है और विश्वास नहीं करती, कहती जी हमारा लड़का तो कहीं घर से बाहर ही नहीं गया, अच्छा तो आज इसको पकड़ करके हम ले चलेंगे खुद अपने हाथों से पकड़ लेंगे। बस पकड़ लिया और भोर अंधकार में ही यशोदा जी के घर में गई। वहाँ जा करके यशोदा जी को उलाहना देने, देखो मैं इसको पकड़ करके ले आई हूँ। तो नहीं पकड़ करके, हमारा तो लाला सो रहा है, तो तुम्हारा लाला सो रहा है कि देखो ये चोरी करने गया, मैं पकड़ करके ले आई हूँ। तो वो मुख उसका ढका हुआ था, मुख खोला तो देखा उसी का लड़का है जो पकड़ करके ले आई कृष्ण ने। इतने में कृष्ण करते हुए वहां से आए, मैया झूठ मुठ को हमको ये कहती है मैं अभी कहाँ सो रहा था और हमारे नाम पर ऐसा लगा करके और अपने लड़के को पकड़ करके मैं वहां का। यशोदा जी कभी कभी उनको डांट देती हैं, तू जरूर चोरी करने जाता। एक दिन चोरी पकड़ कर यशोदा जी उसको शासन करने लगे, तू बड़ा ढीठ हो गया। कृष्ण रोने लगे और रो करके बोलते हैं तूने अभी खाया मक्खन चोरी करके, हाथ में लग रहा है, मुख में लग रहा है। तो वो कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खाया, मैंने कहा मक्खन खाया। भोर भयो भगवान के पीछे मधुबन मोही पठाए, भोर हुआ और उसी समय गैया बछड़ों को देकर के मुझे मधुबन में पठा दिया गोचारण करने के लिए, मैं बिना कुछ खाए पिए तुम्हें सनिक भी मोहर ममता नहीं लगी, बिना खाए पिए और हमको भेज दिया और मैं चला गया। और शाम जब हो गई तो मैं गैया बछड़ों को लेकर के लौटा करके आया, शाम हो गई, फिर मैंने कब दही और मक्खन चुराया तुम ऐसे कहती रहे। मालूम होता है मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, मैं दूसरों का पुत्र हूँ और तुमने हमको पाला पोसा ले लिया, इसलिए तुम्हारी हमारे प्रति ममता नहीं है और तू हमें डांटती है और डपटती है। ऐसे कहते ही यशोदा जी के आंखों में आंसू आ गए बरबस और बोली, मन ही मन में सोची और ये तो ठीक नहीं है, बस आंसू आ गए और बोली नहीं तुमने चोरी नहीं की, तुमने मक्खन नहीं खाया। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैयारी मैंने ही माखन खाया, मैंने ही पहले कहा था, अब कहते हैं मैंने ही माखन खाया। यशोदा जी भी रोने लगी, कृष्ण भी रोने लगे। यशोदा जी ने उनको अब से आज से ऐसा नहीं कहूंगी, और कृष्ण कहता है कि आज से मैं भी ऐसे नहीं कहूंगा। ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं हो रही हैं, सबका मन मोहित कर रहे हैं। कभी किसी बच्चे से कहा जैसे जिसका घर था उसी के घर में गए टोली में, और उस बच्चे से कहा जो उस घर का बच्चा है, और उसे कहा जैसे बछड़ा खोल दे, और उसने बछड़ा खोल दिया गाय का दूध पीने लगा, और वही बच्चा अब फिर घूम करके जाता है, अरे मैया वो बछड़ा दूध पी लिया, और वो जल्दी से दौड़ करके बछड़े को पकड़ने गई और इतने में टोली के साथ में घर में पहुंच गए और वहां पर दूध मक्खन जो कुछ था वो सब खा लिया। आई भग करके चले गए। देखो यदि उन लोगों ने चुराया तो उनके अंगों से जो नीम मणि की कांति आती है, अंधकार भी करके रखती हैं तो उसे देख करके और चोरी कर लिया। यदि सिक्के पर रखा ऊंचाई पर किसी लठिया से फोड़ दिया और उसमें गिरने लगा, मुख लगा करके खाने लग गया। यदि किसी ने और फिर चोरी करके कहीं इधर छिपा दिया। अरे बैठ जाओ, जहाँ पीछे तो आएंगे आगे आना चाहिए ना। फिर यदि छिपा दिया तो कृष्ण उसके सोते हुए बच्चे को चिमटी काट दी और वो रोने लग गए। इस तरह से बाल्य लीलाओं को करते 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 जाओ तीन वर्ष के हो गए। तो
हल्ला क्यों करती है?
ये पीछे से आकर के तंग करती है ना सब। पीछे से आकर के पीछे बैठो,
चिमटी काट देती है।
जब साहब तीन वर्ष के हो गए, नंद बाबा उपानंद इत्यादि नंद बैठक में सभी लोगों ने एक सभा की। सभा करके बापू जी, ये छोटा सा बच्चा है, उतना कहाँ राक्षसी, विराट राक्षसी वेश बदल करके आई और कालकूट बीसी से पिलाया, किंतु हमारे नारायण तो शक्तिशाली हैं, उनकी कृपा से हमारा बच्चा बच गया, कुछ नहीं हुआ। एक असुर आंधी का रूप धारण करके आया, हवा का रूप धारण करके। ये कृष्ण हमको देख नहीं सकेगा, पकड़ नहीं सके, पुतना को तो पकड़ लिया, हमको देख नहीं सकेगा। और आकर के यशोदा जी वहां से छोड़ दिया, वहां पर घर में चली गई और उसने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण उसके गले में हाथ डाल दिया, वह आकाश मार्ग में उड़ गया। सोचा जो वहीं से पकड़ करके फेंक देंगे, बहुत चेष्टा की किंतु गला नहीं छुड़ा सका। यशोदा मैया जी ने एक धक्का देकर और छुड़ा दिया कहाँ, और ये हजारों हाथियों का बल लेकर के भी नहीं छुड़ा सका। वहां से कृष्ण ने ऐसा गोल जोर से गला दबाया, रसगुल्ले जैसे आंखें निकल आई और वहीं से वो गिर पड़ा और वो मर गया। रमण द्वीप में नहीं गिरा, वो यहीं पर गिरा, ब्रज में ही सब लोगों ने देखा और वहीं पर लोगों ने आकर के उसके वहां से उसको सत्तासुर का भी ऐसा बड़ी से विपत्तियां हैं, उनको सुरक्षा करनी थी। कृष्ण और कुछ बड़े हो गए हैं, यशोदा मैया जी कभी दूध मंथन कर रही, दधि मंथन कर रही और कृष्ण पलंग पर सोए हैं। यशोदा जी सवेरे ही आकर के दधि मंथन करने लग गए, कृष्ण अकेले वहां पर सोए। यशोदा जी परम सुंदरी, उसमें भी रेशमी वस्त्र धारण किया है, बहुत सूक्ष्म, उनके अंग भी उसमें से झांक रहे हैं, सोने का कंगन है, केशों में फूल की माला है और एक खंभे में रस्सी लपेट कर मथनी में लपेट दिया गया और उसी को घर घर इस प्रकार से दधि मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ में गा भी रही हैं, ऐसे स्वर से गा रही हैं, एकदम तन्मय हो गई। दधि मंथन का स्वर जो निकल रहा है मानो तान झिक तान कर, और इधर वाला एक वो तान करा इधर झिक कर। जो लोग कृष्ण का नाम नहीं करते, कृष्ण का स्मरण नहीं करते, उनको तान ये कहता तान, माने उन लोगों को धिक्कार है। मनुष्य जन्म लेकर के भी भगवान का भजन नहीं करे, और हाथों में कंकण वो जो बज रहे हैं, चूड़ियां बज रही हैं सोने की, मानो सुंदर करताल उस पर, और तन्मय होकर के दधि मंथन के स्वर में स्वर मिला करके और वो गाए गोविंद दामो माधवे जी, गोविंद दामो माधवे जी, गोविंद दामो माधवे जी, उदुखले सं घृत घंटयंतो मुसलई प्रमुखा गायन्ति गोप्या जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवे जी। गोविंद दामो परमाथवे की, सन्न होकर के गाए। गाते गाते इधर कृष्ण की नींद खुली, नींद खुलते ही कुछ आंखों में अलसाई हुई, इधर देखा उधर देखा, हाथ उठा करके देखा मैया तो है नहीं, तो करके रोने लगे। किंतु यशोदा जी तो तन्मय हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ा। फिर उसी समय में कृष्ण किसी तरह से बड़ी मुश्किल से पलंग से पेट के सहारे उतरे और ऊँ भी कर रहे हैं मैया सुन ले, और ऐसे लड़खड़ा करके चलने लगे। जितनी वो सुंदरी है उतना उनका स्वर बढ़ रहा है और वो तन्मय होकर के। अच्छा उस समय कृष्ण कहाँ है, ये दिखला रहे हैं कि यदि तन्मय होकर के कोई कृष्ण नाम करता है, कृष्ण कहीं स्वयं ही रहे होंगे ना, झट वो आ जाएंगे, वो कीर्तन में जरूर आएंगे। इसलिए यशोदा जी आकर्षण कर रहे हैं और वहां से आ रहे हैं, एकदम निकट में आए और जोर से उन्होंने आरम्भ किया, तभी नहीं वो सुन रहे हैं। एकदम जब निकट आ गई तो उन्होंने मंथन पकड़ लिया और साथ ही साथ में उनका एक जुड़ा ऊपर से अंचल पकड़ लिया। जब वो पकड़ लिया तो देखा भाई ये चल रहा है, मतनी क्यों नहीं चल रहे, तो साथ ही साथ में उन्होंने ऐसे पीछे फिर करके देखा, वो तो छोटा कन्हैया है, बस प्रेम से उनके आंखों में आंसू आ गए और उसको अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में ले लिया अभी गोदी में ले लिया और स्तन पान कराने लगी, अंचल से कृष्ण को ढक दिया, दधि मंथन बंद हो गया अपने आप। इसमें मना करो तो दधि मंथन बंद हो गया, आंखों से आंसू झरने लगे, इसी को रस कहते हैं। ये वात्सल्य रस है, कृष्ण को अपना प्रेम का विषय बनाया जाए और अपने को आश्रय, चार भाव में से कोई एक भाव स्थिर कर ले, कृष्ण को अपना प्रभु माने और अपने को सेवक सेविका, अथवा कृष्ण को अपना सखा माने, कृष्ण सखा है मैं उनका सखा हूं, अथवा कृष्ण को अपना पुत्र मान ले और अपने को कृष्ण का पिता माता मान ले, अथवा कृष्ण को प्राण प्रियतम मान ले और अपने को उनकी प्रियतमा मान ले। इस तरह से कृष्ण के प्रति भाव योजना करके संबंध लगा करके भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा संबंध नहीं होने से ब्रज का भाव तो कदापि नहीं मिल सकता है। इसलिए यशोदा जी यहाँ पर प्रेम के वात्सल्य की आश्रय हैं, कृष्ण जी उसके विषय हैं, उद्दीपन ये कहलाता है। कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप, बाल गोपाल का रूप, ये उद्दीपन का भाव। गोदी में बैठा लिया और दूध पिलाने लगी और साथ ही साथ उनको रोमांच, कंप, अस्थिर इत्यादि होने लगे। साधारण लोगों को नहीं होगा, भजन करते 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 जब संसार का आवेश सब कुछ भूल जाएगा और इन लीलाओं में ऐसे तन्मय हो जाएंगे, अब शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, उस समय में भगवान की कृपा से ऐसे भाव आ सकते हैं। यशोदा माँ आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं, साथ साथ में दूध पिला रहे हैं, दूध अपने आप झर रहा है, उसमें दूध इतना निकल रहा है विश्व ब्रह्मांड के लोग उसमें तृप्त हो जाएं, उसी से क्षीरोद सागर उसी से निकला, यशोदा मैया के दूध से इतना दूध है, अनंत विश्व ब्रह्मांड उससे तृप्त हो जाए। किंतु कृष्ण का पेट भी उतना छोटा नहीं है, बहुत विशाल है, उनके एक एक रो में विश्व ब्रह्मांड भरा पड़ा है। इसलिए सामने ही में दूध को यशोदा जी ने रख रखा था गर्म होने के लिए, जब दही का उसमें जाकर देकर के उसे दही बनाया, इसलिए वो गर्म हो रहा था। उसने देखा जब हमारा कभी मौका नहीं मिलेगा जब कृष्ण हमको पिएंगे, इतना स्तन से दूध अपने आप झर रहा है, विश्व ब्रह्मांड भी पी करके अब आ जाए। और इधर कृष्ण का ऐसा है कि उनका पेट कभी जन्म जन्मांतर में भरेगा ही नहीं, उनका इतना लंबा चौड़ा पेट, तब तो मुझे तो सेवा करने का अवकाश नहीं मिलेगा, इसलिए प्राणों पर रख करके क्या करूं। यदि कृष्ण की सेवा में ही हमारा यह शरीर प्राण आत्मा नहीं लगा, इंद्रिया नहीं लगी, तो उसे मर जाना ही बेहतर। भक्तों की ऐसे ही भावना होता है, यदि यह शरीर हमारा किसी कृष्ण की सेवा में नहीं लगा, इस शरीर की कोई धारण करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मानो वो दूध खन करके आग में या आग ही में कूद करके मर जाऊं। यशोदा जी ने यह दृश्य दूर से देखा और देख करके उन्होंने जहा नहीं नहीं तुम मत करो, हम अपनी सेवा बंद कर देंगे, तुमसे सेवा करेंगे, ये गुरु का काम है। यशोदा जी वास्तव अरस की गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए दूसरों को मौका देती हैं, अवसर देती हैं जो दूसरे भी कृष्ण की सेवा करें। गोपियाँ भी ऐसी हैं, लाखों करोड़ों हैं, किंतु यदि नए रूप में कोई गोपी भाव से उनकी सेवा करना चाहता है तो उसको अपने से आगे कृष्ण के चरणों में निवेदन कर दे, ये दूसरों से काम नहीं होगा, दूसरों में शौच या डाह आएगा, दूसरे ईर्ष्याएं, किंतु वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं। इसलिए यशोदा जी ने कहा ठहर जाओ ठहरो, बस कृष्ण को स्तन से छुड़ा करके बैठाना चाह, और कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उनके स्तन जोर से पकड़ लिए, पैरों से जोर से लगा दिया ना? और मुख से भी स्तन को खूब जोर से पकड़, जो कृष्ण मैं यशोदा मैया न छोड़ा सके, अपनी पूरी शक्ति सर्वशक्तिमान है, पूरी शक्ति लगा दीजिए यशोदा मैया न छोड़ा सके। और उधर देखा ना, उतना 60,000 हाथियों का बल लेकर छुड़ा रही है और छोड़ नहीं रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छुड़ा नहीं, अंत में विशाल रूप धारण किया। जब नहीं छोड़ा सकी, सोची जैसा भी कंस के यहाँ जाए हमारा भैया और वो छोड़ा देगा, इसलिए वहां से उड़ी आकाश में लेकर के कृष्ण को। कृष्ण कहे तुमको ब्रज से बाहर नहीं जाने दूंगा, अब तुमको तो मैया के रूप में हमने ग्रहण कर लिया, तू कैसे मथुरा में चली जाए। जोर से ऐसा खींचा जे प्राण तक खींच लिया, और वो 12 कोस की या 12 मील की लंबी कंस के बगीचे पर पड़कर उसे चकना चूर कर दिया, और उसका हाथ जो ऐसे ऐसे गया वो हथरस हुआ, कोई कुछ उसके रुए जहाँ गिरे वो हो गया राया, और सब उसके मतलब जहाँ उसका पड़ा था वो मूर्सान, वो सब स्थान का वैसा ही सब नाम रख दिया गया, उसी समय से ये चल रहा है, ये झूठी बात कल्पना की नहीं है, उसी समय से लोक प्रसिद्धि उन स्थानों की हो गई, वहीं पर वो गिर पड़ी, छुड़ा नहीं सकी अंत तक। उस समय कृष्ण ने कोई जोर नहीं किया, उस समय कृष्ण स्वाभाविक रूप में है, तभी नहीं छुड़ा सके, और आज कृष्ण सब समस्त उनकी जितनी शक्तियां हैं सब लगा दी, पैरों से हाथ से मुख से यशोदा जी को जकड़ लिया, किंतु कृष्ण यशोदा जी ने देखा जैसे ये बड़ा ठीक है, बस झट झटके से दिया बैठ यहाँ, बस इतना ही कहा, पकड़ करके झट बैठा, एकदम हटा, एक सेकंड में नहीं लगा, कृष्ण की सारी शक्तियां सब कुछ मट्टी में मिल गई, और उसको उठा करके बैठा दिया। अब कृष्ण क्रोध के मारे दांत कड़मड़ी करने लगे, होठों से दबा लिया, अगर फड़कने लग गए, हमको इसने उठा अभी दूध पिया नहीं पूरा, दूध ही इसका प्यारा नहीं, इसका प्यारा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, एक बच्चे ने अपनी कमीज थोड़ी सी फाड़ दी या उसको गंदा कर दिया, मैया ने थप्पड़ मारा। अच्छा मैया प्यारा, वो बेटा उसका प्यारा है ना कि वो कपड़ा है, कपड़े के लिए बेटा ना, बेटा के लिए कपड़े, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो भक्त लोग भगवान से भी, भगवान के पालन पोषण करने की वस्तुओं को अधिक स्नेह और प्रीति रखते हैं, इसलिए यशोदा माँ के दूध को रक्षा करने चले गए, और कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, कुछ कर न सके। जब वो चली गई दूध को उठाने के लिए, दूध को वहाँ पर लेकर के रखा, पानी को उठाया, छीटा दिया, पानी से मैंने उसका मुख बन गया, अब तुम मत रो, अब तुमको शांत, अब तुमको कृष्ण की सेवा में हम खुद लगाएंगे, ऐसा कह करके और दूध को सांत्वना देकर के लौटी। देखा जो है नहीं कृष्ण, इधर कृष्ण ने किया देखा जब मैया के सामने तो कुछ बस चला नहीं। रावण को, कुंभकर्ण को, हिरण्यकश्यप को और हिरण्याक्ष को मारने में, पृथ्वी को उठाने में, गोवर्धन को धारण करने में उनको कोई भी प्रयास नहीं हुआ, किंतु माता जी के प्रेम के सामने उनकी कुछ भी बस नहीं चलता है। ऐसे वो बसीभूत हो जाते हैं प्रेम के मारे। उन्होंने देखा जैसे अब क्या करें, अच्छा मैया को भी मैं शिक्षा दूँ। मैया को क्या शिक्षा देंगे? उन्होंने पास ही में एक शिला पुत्र, शिला पुत्र माने शिला का पुत्र, पत्थर का पुत्र, वो लोढ़ा जो कि रगड़ने के लिए होता। आजकल की शायद स्त्रियां जानती भी नहीं हुई जो लोढ़ा और स्टील किसको कहते हैं, पहले वाली सब जानती थी। पीसना पड़ता था, स्वास्थ्य अच्छा रहता था, बचपन में बूढ़ी नहीं हो जाती थी, ज्यादा पीसती थी, मुश्किल से कूदती थी, सब कुछ बिजली का चल गया और थोड़े दिन के बाद में बूढ़ी हो जाती है, चल नहीं सकती। एक छोटी सी बच्ची चल नहीं सकती और पहले ये सब परिश्रम का काम था। तो वो कृष्ण ने लोढ़ा उठाया और झट ठुक ऊपर नहीं मारा, कहाँ मारा? ऊपर मारने से उसका दूत नहीं चारों तरफ में फैलेगा, नीचे गिरने से एकदम एक तनिक भी गति मंथन का वो भाग नहीं रह जाएगा, इसलिए एकदम नीचे की तरफ मारे। ऊपर के मारने से दिख पड़ेगा, नीचे मारने से दिखेगा नहीं। बहुत चिंता करके उन्होंने भीतर से उसको मारी और थोड़ा सा सुराग हुआ और थोड़ी देर में फैल गया और वो देखने लगा, रोना भूल गया। कज्जल मिश्रित यहाँ पर आंसू सूख करके गंगा जमुना जैसे वहां तक डांट पड़ गए। इतने में देखा जैसे अब डर हुआ, और यदि मैया आई तो मुझे तो पीट देगी, इसलिए क्या करूं? ये यहाँ पर दधि मंथन हो रहा है, पीछे एक घर है और उस घर से बाहर में जाने का भी एक दरवाजा है, बस इस दरवाजे को खोल करके भीतर में चले गए और उसी में दधि का भांड और मक्खन नए नए सब ताजे निकले थे, बस घर के अंदर में घुस गए और घुस करके ओखल रखी थी उसको उलाटी हुई, कौवे चौवे उसमें बीट न कर दें, इसलिए उसके ऊपर में चढ़ गए और ऊपर से मक्खन खा रहे हैं। अभी तक सखा नहीं आए थे, कुछ कुछ दोए कौओं ने देखा, कौए आने लगे, बंदरों ने देखा, बंदर आने लगे। कृष्ण निकालते हैं बंदर हाथ से, उनका पकड़ना चाहते हैं, बंदरों को कुछ खिला रहे हैं, कुछ कौओं को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? पूर्व जन्म में जब राम वो थे तो राम के लिए सीता जी को पता लगाने में और उनके लिए युद्ध करने में अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। रामचंद्र जी ने उनके खाने की व्यवस्था कुछ नहीं की, जहाँ